اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی تھرڈ مجلس ہسٹری آف ہولی پلیسز جو رضوی کالج بامبے میں ہوئی تھی عشر محرم میں، اسی کا کنٹینیوشن ہے. وہ جگہیں، وہ پلیسز کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پلیسز ہیں کہ جہاں جا کے اپنی ڈیسٹینی کو ہم بدل سکتے ہیں، ان لوگوں کی یہ جگہیں ہیں کہ جن کا احسان اسلام کے اوپر ہے. ہمارے سارے معصومین کی جو خبریں ہیں، گریوز ہیں، اس کی ہسٹری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ٹائم فیکٹر ہے اور ابھی تک میں نجف اشرف سے باہر نہیں نکل سکا، جبکہ اتنے اور واقعات کو میں چھوڑ کے پڑ رہا. آج کوفے میں پہلے انٹر ہو جاتے کہ کوفے میں، کل میں نے بتایا تھا کہ مسجد سہلا ہے، لیکن مسجد سہلا کی جو بات چیت تھی وہ اپنی جگہ پر میں چھوڑ رہا وہاں پہ، اس لیے کہ ورنہ ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی صرف پانچ مدرسیں رہ گئے ہیں، ابھی کاظمین سامرا باقی ہے، مشہد مقدس باقی ہے. لیکن میں جلدی بھی اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں جلدی کرنا نہیں ہے، اس میں صرف مقصد جو ہے، جو انٹینشن تھا میرا، وہ یہ کہ اس جگہوں کی امپورٹنس ہم کو معلوم ہونا. اگر امپورٹنس معلوم ہوگی تو جب آپ زیارت کو جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں. اگر جگہ کی امپورٹنس ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے وہاں جا کے. تو جب اب زیارت کو جانا تو آپ ایک ایک جگہ جا کر چیک کرنا، دیکھنا کہ نجف اشرف میں جو علماء کی ہے، خالی علماء کے پاس بھی ضرور جانا. میں ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ وہاں ایسے ایسے علماء، پلیز غور سے سننا جملہ، ایسے ایسے علماء ہیں، ایسی ایسی پرسنالٹیز مولا علی کے روضے کے اندر دفن ہیں، پورے اطراف میں. مولا کے جو بیچ میں مولا کی ٹو گریو ہے، دو مینارے ہیں اور اندر کا پورا سہن. تو ہم کیا کرتے، سیدھا جاتے مولا کی زیارت کرتے، واپس آ جاتے، فائن. لیکن ان کے بھی گریس پہ جانا لازم ہے، اس لیے کہ یہ سب علی والے، ان لوگوں نے امام علی کے لیے کام کیا اور ان کا احسان ہے. میں ایک بات بولتا یہاں پہ کہ اگر یہ سارے علماء کہیں اور دفن ہوتے، ان کی گریوز کہیں اور ہوتی، نجف میں یا کوفے میں یا کہیں اور، مطلب اگر انڈیویجل الگ الگ ہوتی تو ہر خبر سے معجزے ظاہر ہوتے، میراکلز ہوتے. لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. کیا سن رہے یار؟ امام علی سورج ہے، ان کے سامنے یہ سب ستارے. صلوات پڑھ لے محمد والے امام. اور یہ جتنے علماء وہاں پہ دفن ہیں وہ کوئی بھی امام علی کے زمانے کے نہیں ہیں، سب باہر کے. خالی میں تیزی سے نام لے لیتا، جب جانا تو یہ لسٹ لے لو، لسٹ لے کے جا کے ان کی ایک ایک گریو پہ جا کے دعا مانگو. وہ جگہیں ایسی ہیں کہ تم وہاں کھڑے رہ کر دعا مانگو گے نا تو ساری تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے کہ یہی تو بڑی بات ہے کہ اگر تم نے امام کے لیے، کسی امام کے لیے، مولا حسین کے لیے یا مولا علی یا امام حسن یا اللہ کے رسول یا بی بی، کسی کے لیے تم نے کام کیا تو اللہ تمہارے پاس تم کو وہ آنر دیتا کہ تمہارے سے مرنے کے بعد بھی معجزے ظاہر ہوتے. یہ نہیں ہے کہ صرف خواجہ اجمیری کے بعد گئے تو دعائیں قبول ہوتی. میں کمپیئر نہیں کر رہا، خواجہ اجمیری کا بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا اسٹیٹس ہے، وی ریسپیکٹ خواجہ اجمیری. لیکن خالی خواجہ اجمیری نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے ابو الحسن اصفہانی وہاں پہ علامہ ہلی کی قبر پہ جا کے دعا مانگو، دعا قبول ہو. مقدس اس لیے کہ یہ لوگ امام علی کے پہلو میں لیٹے ہوئے، اور کوئی امام علی کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے، سب سینچریز اینڈ سینچریز کے بعد کے شیعہ ہیں. آپ سوچو کہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے ان کا. تو بارہ امام علی کے روزے کے اندر جو جو لوگ ہیں نا، ان کے اب خالی بولتا علامہ ہلی ہے، مقدس اردبیلی ہے، اس کے بعد شیخ طوسی ہے، ابو الحسن اصفہانی، مرزا حسین نوری، شیخ مرتضی انصاری، الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، شیخ عباس خمی جو مفتی کے رائٹر ہیں، ये वो लोग हैं कि जो इमाम के रोजे के अंदर दफन है। अब मैं जा रहा कूफे में, कूफे में कौन है? कूफे में भी ऐसी पर्सनालिटीज है। हम कूफा जाते सिर्फ इमाम अली के घर को जाते, बेशक जाना घर को, मौला के घर पे जाके अपने घर के लिए दुआ करो कि बॉम्बे में चार पांच फ्लैट मिल जाओ, लेकिन उसी को इमाम अता करता जो हलाल रिस्क के साथ रहता। अगर आप जाके बोले मौला मैं ये ब्लैक कर रहा और मुझे ये करूंगा, मुझे जो है घर अता करो, तो घर नहीं मिलता। अली के घर में जाके अपने घर के लिए दुआ मांगो। जिन लोगों ने अली के घर में जाके अपने घर के लिए दुआ मांगी, दो बेडरूम से चार बेडरूम में आ गए, चार बेडरूम से बंगलों में चले गए, इसलिए कि अता में थोड़ी कमी है, मांगने का सलीखा चाहिए नहीं। और मौला के घर में जाके मांगो, इसलिए कि वहां पे वो जगह ऐसी है, इमाम अली का जो घर है ना, वो घर जगह ऐसी है कि आप इमेजिन करें। वो देखिए घर तो वो पुराना वाला घर नहीं है जो रियल घर था, लेकिन प्लेस तो वही है, जगह तो वही है। आप सोचो वो जगह कैसी है कि जिस जगह पे इमाम अली रहते थे, जहां उनके कदम पड़े, सिर्फ इमाम अली के कदम नहीं, इमाम हसन इमाम हुसैन के भी वहां पे वो लोग रहे, मौला अब्बास भी वहीं रहे, शहजादी जैनब शहजादी उम्मे कुलसूम जिस घर में रहती थी वो भी वहीं है, और बीबी उम्मुल बनीन जहाँ रहती थी वो भी वहीं है। तो वो जगहों पे जाके उस जगह पे खड़े रहकर खाली दुआ मांगना, तो आपकी दुआ 100% कबूल हो जाए। आप सोचो वो जमीन कैसी होगी जहां पूरे मौला का खानदान रहता, फैमिली में क्लोज फैमिली मेंबर्स। उसके बाद वहां पे एक रूम है जहां पे बताया जाता कि ये वो कमरा है जहां इमाम अली को गुस्ल दिया गया था। वहां जाके अपनी आखिरत के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह मेरी जो आखिरत की लाइफ है, जो दुआ हम कभी नहीं मांगते, हमारी 1000 दुआ सुबह से शाम तक आप दुआ मांगते, मुझे दिल पे हाथ रख के बोलना, मुझे मत बोलो। आज आप खुद सोचो कि क्या मैं रोज मेरी आखिरत की दुआ करता कि मौत खबर बरज़ख महशर जन्नत के दरवाजे तक सिरात तक मुझे सुकून दे, मुझे वॉक थ्रू हो। हम कभी नहीं करते, कोई करता होगा मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मेजोरिटी क्या है, हम मांगते क्या, मुझे ये दे दे, दुनिया सारी दुनिया मांग रहे। ऑलवेज हमारा एक नेचर कि वी जस्ट आस्क के परवरदिगार बॉम्बे में मुझे ये दे ये दे ये दे ये दे, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी आखिरत की दुआ मांगो। असल चीज वो है, तुम उस चीज के लिए दुआ मांग रहे कि जो तुम्हारी नहीं है, कभी भी खत्म हो जाएगी। मौत के साथ ये बॉम्बे खत्म हो गया तुम्हारा, मौत के बाद तुम रिग्रेट करोगे कि मैंने बॉम्बे के लिए क्यों मांगी, काश मैं आखिरत के लिए मांगता, काश मैं आखिरत के लिए मांगता। जो कुछ मांग रहे तुम बॉम्बे के लिए मांग रहे, आप सोचो मैं क्या बोल रहा। हमने कभी आखिरत के लिए मांगी? हमने कभी यह सोचा कि परवरदिगार मेरी मौत बिल्कुल ईमान के साथ हो, मेरी फर्स्ट नाइट बड़ी आराम के साथ गुजरे, मेरी पूरी लहर में पूरी ग्रेव में जो मेरी एटर्नल लाइफ है वो लाइफ बड़ी पीसफुल गुजरे, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे कोई बरज़ख में अजाब ना आए। हम कभी नहीं बोलते, हम यही मांगते कि अल्लाह मुझे बॉम्बे में ये दे ये दे ये, नथिंग रॉन्ग, मांगो बॉम्बे के लिए, लेकिन ज्यादा दुआ आखिरत के लिए मांगो। तो जब इमाम अली के घर में जाना, उस रूम में जाना जब मौला अली को कफन पहनाया गया था, तो वहां पे सोचो कि यहां अली को कफन पहनाया गया, एक वक्त बॉम्बे में ऐसा भी आएगा जब मुझे भी कफन पहनाया जाएगा, तो उस वक्त दुआ मांगो कि परवरदिगार जैसे मेरे मौला का इस जगह का वास्ता जहां इमाम अली की डेड बॉडी पे कफन रैप किया गया था, और रैप करने वाले कौन थे? इमाम हसन इमाम हुसैन। जगह कैसी इंपॉर्टेंट है, हम जाके दुआ मांगते। मैं क्यों मैंने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया इस साल के लिए कि अवेयरनेस तो आए, कब तक ये गफलत और इग्नोरेंस में रहेंगे? इसलिए कि मुझे इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही, प्लीज बोल रहा हूं आखिरत की दुआ आज से मांगो। उसके बाद एक रूम और है जब मौला अली को गुस्ल दिया गया था। आप इमेजिन करो, कभी मैं दुआ करता कि अल्लाह जब मेरे लिए गुस्ल दे तो तू मेरे लिए आराम आराम का, वरना क्या है मत पताया। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये मासूम बोल रहे कि जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर पानी डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, जब तुम्हारी बॉडी को वॉश किया जाता है, तो मुर्दा पुकारता है कि बेटा प्लीज स्लोली, बेटा स्लोली, बेटे को बोलता, लोगों को बोलता कि स्लोली। इमाम बोलते कि जब तुम्हारी बॉडी पे पानी डाला जाता तो मैयत को ऐसी तकलीफ होती जैसे उसकी बॉडी के ऊपर पत्थर पड़े। इसीलिए जब आप बॉडी को टर्न करते गुस्ल देते वक्त, औरत हो मर्द हो लड़की हो लड़का सबको, जब टर्न करते बॉडी को, तो हुक्म यह है कि स्लोली टर्न करो। क्यों? इसलिए कि उसको मैयत को ऐसा फील होता है जैसे आसमान से कोई जमीन पे फेंक रहा। तो वहां जाके ये दुआ करना मौला अली के घर में जाके, उस जगह पे जाके कि मौला प्लीज अल्लाह तुझे अली का वास्ता, जब इसलिए कि गुस्ल तो 100% होने वाला है, इफ नॉट टुडे टुमारो कल तो होने ही वाला है, हर आदमी का होगा। कोई ऐसा है दुनिया में कि जिसको गुस्ल नहीं होगा? अल्लाह वो वक्त ना लाए तो गुस्ल तो सबको होने वाला है। तो देन यू हैव टू आस्क, औरतों को भी बोल रहा, मेरी मां बहनों को भी बोल रहा कि वहां जाकर इमाम अली का वास्ता देकर उनके घर के अंदर उस रूम में जाकर दुआ करो। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, हम इसको इजी ले रहे लेकिन आज आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो आज आप रियलाइज नहीं कर रहे। टुमारो यू विल रियलाइज कि जब तुमको तुम्हारी औलाद गुस्ल देगी ना और पानी पड़ेगा तो तुम चीखोगे, पुकारोगे, आवाजें बुलंद करोगे, लेकिन तुम्हारी आवाज उनके कानों तक नहीं जाएगी, नहीं जाएगी उनके कानों तक। तो इमाम अली के घर में जब जाना, व्हेन यू गो टू हिज हाउस, उस रूम में जाना तो गुस्ल के लिए भी दुआ करना, कफन के लिए भी दुआ करना कि मौला मेरा गुस्ल रहमत का, वो पानी मेरे लिए रहमत बन जाए, वो पानी जो वाटर पड़ रहा मेरी बॉडी के ऊपर वो रहमत पड़ जाए। ये बातें आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब जाना ज्यारत को तो उस रूम में जाके ही दुआ मांगना, उसके बाद जहां कफन लिप्ट, फिर जहां से मौला अली के घर से जब जनाजा चला था, उनका कॉफिन चला था, तो तुम ये दुआ करना वहां जाके कि मेरे मौला आपका जनाजा आपका कॉफिन यहां से चला था, जब हमारा कॉफिन हमारे घर से चले तो मेरे ऊपर रहम करना मौला, मेरे ऊपर रहम करना, वरना तुम्हारा कॉफिन आपको पता है आग का बन जाता, आग का बन जाता। इसलिए कि अगर मेरा कफन का खुम्स दिया हुआ नहीं है, अफसोस से बोल रहा, हर आदमी करबला से कफन लाता, जरूर लाओ, बेहतरीन गिफ्ट है करबला का, लेकिन कफन लाकर कितने का लाते हैं? इंडिया के 2000 मैक्स 2000 3000 इंडियन रुपीस का कफन लाते, लाके वी पुट इट इन अलमारा, हम अलमारा में रख देते। उसके बाद जब मरेंगे तो बेटा लाके कफन देता हमको या बेटी लाके कफन देती, वो 3000 का कफन का 600 रुपीस खुम्स बनता है, उसका निकाल दो, घरों में जाके चेक करो कि जो दो दो तीन तीन कफन रखे हुए करबला के उसका खुम्स दिया हुआ है। अगर खुम्स नहीं दोगे तो तुम्हारा कॉफिन जब चलेगा, जब तुम्हारा वो लिबास फाइनल ड्रेस जब तुमको पहनाया जाएगा तो वो आग का बन जाता। हक जहरा के बगैर कोई कफन शिफा नहीं देता, हराम के पैसों से तुम लास्ट ड्रेस नहीं खरीद सकते। हम मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदते हैं यहां पर, इस्लाम मना नहीं कर, आप खरीदो, मैं यूथ को बोल रहा, ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदो, इफ यू कैन एफोर्ड, इफ यू कैन एफोर्ड व्हाई नॉट, तुम ब्रांडेड ड्रेस पहन के फिरो, लेकिन हराम के पैसों का मत पहनो। तो वहां पे जब मौला के घर में जाना तो वहां ये दुआ करना, मौला जैसा आपका कॉफिन यहां से गया, आप तो रहमत रहमत ही रहमत, दुआ करो कि परवरदिगार इस इमाम अली के नाम पे मेरा जब जनाजा अपने घर से निकले, मौला अली के घर की दुआ, मेरी बॉडी जब घर से निकले, मेरा कॉफिन जब घर से निकले, तो मौला अल्लाह तो मौला के नाम पे मेरी पूरे कॉफिन को रहमत का कॉफिन बना दे। ये दुआएं वहां जाके करना। बस मैं क्या करूं, पूरी मदीसी इसी पे पढ़ दूं, मैं रोक रहा, फिर आगे बढ़ा। कूफे में मस्जिद कूफा में एंटर हुए, मस्जिद कूफा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्जिद है हमारी होली प्लेसेस की, इतनी इंपॉर्टेंट मस्जिद है। हम क्या करते, जो मैं देखता हूं जनरली, हम क्या करते हैं, जाके दो दो रकत नमाज एक एक जगह पढ़ते हैं, वो भी फास्ट 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 नमाज पढ़ना है, इसलिए कि ग्रुप के साथ है, डजंट मैटर। ये मस्जिद कब से, इसकी हिस्ट्री पता है? ये एक मस्जिद ऐसी है, मस्जिद कूफा, जहां कोई मासूम दफन नहीं, लेकिन मस्जिद कूफा इतनी इंपॉर्टेंट मस्जिद है कि वहां पर खसर नमाज नहीं है, पूरी नमाज पढ़ना है। पहली फजीलत मस्जिद कूफा की, अगर आप चार रकत जोहर पढ़ रहे, जोहर का वक्त आ गया तो आपको चार रकत पढ़ना है, दो रकत नहीं पढ़ना। मस्जिद सहला में जाएंगे तो आप दो रकत नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद खिबलतैन में जाएंगे तो दो रकत पढ़ेंगे, मस्जिद खुबा जाएंगे तो दो रकत पढ़ेंगे, खसर पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद कूफा में पूरी नमाज पढ़ेंगे। इस सब पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट मस्जिद की हिस्ट्री, यह मस्जिद आज की नहीं, यह मस्जिद जनाब नूह के जमाने की है, यहां पर जनाब नूह का घर था, यह हिस्ट्री हमको नहीं मालूम। जनाब नूह 18,000 ईयर्स पहले जो वाकया हुआ, जो पूरा वो इंसिडेंट हुआ साइक्लोन का, वो जो तूफान आया था, तो ये जनाब नूह का घर था, वो रहते थे वहां पे, ये मस्जिद कूफा के पास अंदर, इसीलिए आज भी वो तंदूर मौजूद है वहां पे जहां से तूफान का आगाज हुआ था। एक अजीम तूफान, पूरा वाकया कुरान में, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, जहां से तूफान स्टार्ट हुआ था वो मस्जिद कूफा है। इतनी पुरानी मस्जिद है ये, वहां पे कई नबियों के मुसल्ले। असल इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको वहां पे बताना चाह रहा, अब वो मुसल्ला है कि जहां इमाम अली ने 4 साल या 4.5 साल, 4 ईयर्स या 4.5 ईयर्स वाजिब नमाजें पढ़ाई, फजर जोहर असर मगरिब इशा। आप सोचो वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह कि जहां अली ने नमाज पढ़ाई थी, इमाम अली ने नमाज नहीं पढ़ाई, इमाम अली के पीछे इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास, मोहम्मद हनफिया, पूरी फैमिली, मौला के पूरे बेटों ने नमाज पढ़ी। अब आप सोचो वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इमाम हसन, इमाम हुसैन के कदम पड़े, जहां पे अली ने जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ाई वो जगह मौजूद है। तो वहां जाके क्या दुआ करना, वहां जाके ये दुआ करना कि मौला मुझे नमाज का, अल्लाह तेरी इबादत का शौक अदा कर। हमको ये दुआ तो करना ही नहीं है। दुआ करो कि मैंने अब तक जो नमाजें पढ़ी इस अली की नमाज का वास्ता, मेरी नमाजों को तो एक्सेप्ट कर ले। छठे इमाम बोलते हैं कि अगर तुम्हारी नमाज एक्सेप्ट हो गई तो सारे अमाल एक्सेप्ट हो गए। तो तुम ये दुआ करना वहां जाके कि मौला मेरी इबादतों को, मेरी सारी इबादतों को और मेरी सारी नमाजों को तू एक्सेप्ट कर ले। कितना अच्छा मौका है कि आप ज्यारत पे जा रहे, तो ज्यारत पे जाके एम्प्टी हैंड्स नहीं आ रहे, आप अपने पिछले सारे आमाल को एक्सेप्ट करा के आ रहे। अगर ज्यारत प्रॉपर करोगे तो मस्जिद कूफा में, वो मस्जिद में जाके, वो मस्जिद में और कई इंपॉर्टेंस है, मैं उसको छोड़ इसलिए कि मुझे अपने वक्त में मस्जिद खत्म करना। आज जैसे लाइट का प्रॉब्लम हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं था। कल तो मजलिस वही टाइम पे 9:00 पे मैं मिंबर पे आ जाऊंगा, तो कोशिश ये करो कि कल से 4 दिन है, काजमैन और सामेरा कल ही करूंगा। आज ऐसा हो गया, इट वाज नॉट इन अवर हैंड्स। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वहां जाके ये दुआ करना कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अगर मैं एक दफा नजफ अशरफ गया, मस्जिद कूफा में गया, और मस्जिद कूफा में जाके अगर मेरी सारी इबादतें कबूल हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है ज्यारत का, इससे बड़ी बात क्या है। हम इस गफलत में हैं कि मेरी इबादतें एक्सेप्ट हो गई, ये जहन से निकालो। प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा कि ये तुम्हारी जहन से आज निकाल दो कि मेरी एक्सेप्ट हो गई। ये यकीन तो कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि गुनाह इतने थे कि मुझे गारंटी नहीं है कि अगर मैं किसी का माल खाया हुआ और मैं उस जगह का कि जिस जगह पे मेरी मैं वजू कर रहा, और अगर मैं वो गजबी जगह है तो मेरा वजू एक्सेप्ट नहीं हुआ, वजू एक्सेप्ट नहीं हुआ तो अमान नमाजें खो चली गई। तो एक चीज याद रखो कि हमेशा हमेशा चेक करो कि तुम नमाज कहां पढ़ रहे, वजू क्या कर रहे, लिबास क्या है, ये सारी चीजें। तो इमाम अली की मस्जिद में, मस्जिद कूफा जाकर अगर तुम्हारी सारी 20-25 साल की इबादतें कबूल हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात क्या है। मुझे अफसोस से बोल रहा कि आज तक अपने आप को शिया बोल रहे और अब लोगों के माल खाए हुए, कितनी अफसोस की बात है। मैं क्या करूं, मेरे कान पके हुए, मुसलसल फोन्स, मुसलसल मैसेजेस, ये पैसा, ये पैसा, इनके पास, उनके पास, इनका खाए हुए। दोस्तों ये शियत नहीं है, फिर तुम जन्नत में भी जा रहे, मतलब डर खत्म हो गया हमारा। किसी का माल खा के कोई इबादत ना मजलिस एक्सेप्ट होगी, ना तुम्हारी ज्यारत एक्सेप्ट होगी, ना नमाज एक्सेप्ट होगी। मौला हुसैन किसी गासिब को सीने से नहीं लगाते, ये चीज याद रखो। बस इतना ही बोलना था मुझे। मस्जिद कूफा में, उस मस्जिद से बाहर आया, ये जगह आमतौर पे किसी को नहीं मालूम, गौर से सुनना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आप जैसी वो मस्जिद, तो सबके जहनों में, मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए, बाहर आके आप राइट पे मुड़ते, उसी मस्जिद तो ह्यूज है, लेकिन जो अंदर की मस्जिद है, मैं उसकी बात कर रहा, जहां इमाम अली का 19 रमजान को जहां जरूरत लगी थी, उसकी जगह की बात कर रहा। वहां से औरत मर्द बाहर आई, बाहर आके राइट पे मुड़े तो सामने जनाब मुस्लिम इबन अखिल इबन अबू तालिब अलैहिस्सलाम का रोजा दिखता, एक गोल्डन टोम है। जब आप जनाब मुस्लिम के रोजे की तरफ जाते, बिफोर एंट्रेंस ऑफ जनाब मुस्लिम जरी राइट साइड के ऊपर एक मुसल्ला है जिसको मुसल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये वो मुसल्ला है कि जहां मेरा छठा इमाम आके जब अपने दादा की ज्यारत करता था और मस्जिद कूफा में आते थे तो इस जगह पे छठे इमाम नमाज पढ़ते थे। वहां जाके उस मुसल्ले पे क्या दुआ करना, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम नॉलेज में इंप्रूवमेंट चाहते, तुम ये चाहते कि तुमको इल्म में इजाफा हो, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और आमतौर पर सबके लिए अच्छा है। अल्लाह का रसूल बोलता है कि अगर तुम इल्म में इल्म की दुआ मांगते, नॉलेज की दुआ मांगना चाहते और तुम बोल तुम ये चाहते कि तुम्हारी मेमोरी शार्प रहे, तुम ये चाहते कि तुम्हारा इल्म काफी हो, तुमको मेहनत कर रहे लेकिन बाज़ वक़्त ये होता कि मैं बहुत पढ़ता हूं याद ही नहीं रहता, तो ये जगह वो है कि जहां जाके तुम, तो रसूल बोलते कि मेरे दो वारिस का वास्ता दो, पांचवें इमाम और छठे इमाम का, तो अल्लाह तुम्हारी नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाएगा। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा, एग्जाम से पहले दुआ करो कि परवरदिगार तुझे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम और इमाम जाफर सादिक इस्लाम का वास्ता, तू तू मेरी नॉलेज में मेरी मेमोरी को शार्प कर। जो लोग इसकी दुआ करते थे उसकी वो कभी भी मेमोरी लूज नहीं करता, लेकिन मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत भी बहुत जरूरी। अगर रोज आप एक पेज कुरान मजीद की तिलावत करें, एटलीस्ट इफ यू रीड वन पेज ऑफ कुरान, एटलीस्ट बोल रहा आप 10 पेज पढ़ो बहुत अच्छा है, और नहजुल बलागा का एक पेज पढ़े तो आपकी मेमोरी शार्प होती, इतनी शार्प हो जाती, इतनी शार्प होती कि लोग हैरत करेंगे कि इतनी 80 साल 90 साल हो गए और इसकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो बहरहाल तो वहां ये दुआ कर, लेकिन उस मुसल्ले से पहले, प्लीज मेरी तरफ देखो, उस मुसल्ले से पहले उसी राइट साइड के ऊपर एक मिनट, एक अंदर अंदर एक मेहराब है। ये कौन सी जगह है, मैं पूछ रहा कौन सी जगह, किसी को याद है? इतनी दफा गए मस्जिद कूफा वो जगह याद नहीं? ये ऐसी जगह है, मिंबर से बोल रहा, गुलिस्तान के अशरे में बोल रहा, तीसरी मजलिस है गुलिस्तान की मेरी, 1440 हिजरी के मुहर्रम की मजलिस। ये वो जगह है कि अगर किसी की दुआएं पहाड़ पहाड़ की तरह, आसमान के बारिश के खतरों के बराबर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर तुम्हारी हाजात हो, ड्रॉप्स ऑफ वाटर काउंटलेस होते, उसको काउंट नहीं करता कोई, ड्रॉप्स को काउंट नहीं करता, कितने इंच बारिश हुई वो काउंट होती, ये सिर्फ अल्लाह जानता या मासूम जानते कि कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर जमीन पर आए, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के उतने, बारिश के खतरों के बराबर, स्टार्स के बराबर, जो काउंटलेस है स्टार्स आसमान पे, यू कैन नॉट काउंट कि कितने स्टार्स है, गूगल पे जाके चेक करो तो मिलियंस और बिलियंस की तादाद में स्टार्स दिखते हैं। अगर इतनी, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी हाजात भी है, तो छठे इमाम से पहले उस मुसल्ले से पहले राइट साइड के ऊपर एक मेहराब है। ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है कि जहां इमाम अली बैठकर मुनाजात करते थे अल्लाह से। क्या सुन रहे यार, ये मुनाजात आज मफातिहुल जिना में सैयद जीशान हैदर जवादी मरहूम की किताब, उसमें भी उर्दू में इंग्लिश दोनों में आ गई, आपको हर मार्केट में मिलेगी, उसमें इमाम अली की मुनाजात का पूरा ट्रांसलेशन अरबी में। मुनाजात क्या मतलब, अली अल्लाह से राज और नियाज, अल्लाह से हाजत तलब करते थे। अगर मेरी ख्वाहिश है आपसे, जिसने पढ़ी है वो पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी, मैं यूथ को बोल रहा, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर तुम रियली लाइफ को चेंज करके, इफ यू रियली वांट टू गेट क्लोज टू अल्लाह, तो तुम देखो अली की ये मुनाजात पढ़ो। इसमें इमाम अली ने दुनिया को बताया कि अली जैसा बंदा, कि उससे ज्यादा अफजल तरीन बंदा जमीन पे नहीं था, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज में रोशनियां दी, समंदरों में कश्तियां चलाई, आसमान से पानी बरसाया, जिसकी मोहब्बत को ईमान कर दिया, जिसे बुक्स कुफ्र निफाक कर दिया, जो सिर इब्राहिम, जो अंबियाओं के उलूम का वारिस, जो जबूर का दरिया, जो इंजील का एलिया, जो इमाम
محشر، جو ساقی کوثر، جو خصیم نار و جنہ، جو دین کا سردار، جو متقین کا امام، جو نیک اماموں کا باپ، جو شوہر بتول ہو. جو شوہر بتول ہو وہ علی جا کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا، مناجات کر رہا. افسوس کی بات ہے، I'm really sad to say this. کتنے لوگ مناجات پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہر کتاب میں موجود ہے، یو ول فائنڈ ان ایوری بک. اور امام علی بول رہے کیسا کہ پروردگار تو رازق اور میں تیرا بندہ ہوں، تو رزق کو عطا کرنے والا ہے، میں لینے والا ہوں. ارے جو کائنات کو رزق بانٹے وہ ایسا بول رہا، وہ علی مناجات کر رہا کہ باہر. وہ مناجات سو سمپل اور 5-6 منٹ کی ہے. میں آپ کو بامبے میں آج تیسری مجلس گلستان میں بول رہا ہوں، تم اگر وہ مناجات روز پڑھو، اگر کسی کے پاس نہیں لیٹ می نو. میں نے کتاب کا نام لیا، سید زیشان حیدر جوادی نے تو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیا. نہیں ہے تو لیٹ می نو، آئی گیٹ یو. روز اپنے گھر میں پڑھو، اگر وہ مناجات کوئی پڑھے گا، امام علی کی زبان کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں، مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے، مولا علی کے دل کی آواز ہے وہ، دل کیا، فرام ہز ہارٹ، فرام ہز ہارٹ. امام علی جب دعا مانگتے تھے تو وہ ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں مانگتے تھے، زبان کی نوک سے نہیں مانگتے تھے، وہ دل سے مانگتے. علی ہے وہ، علی دل سے مانگتے تھے. جب مانگتے تھے تو کیسے جملے ہوں گے، کیسے ورڈز ہوں گے، کیسا تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی دعا ہے. سو سمپل، 10 یا 8 6 یا 7 منٹ یا 8 منٹ، ناٹ مور دین دیٹ. یہ مناجات رمضان میں مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہو سکتا رمضان میں بامبے کی مسجدوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور جب آپ وہاں جاتے تو پڑھو، تو اس کو اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، آنکھوں میں آنسو آ جانا کہ یہ علی بول رہا. صرف مانگا ہے علی نے وہاں پہ، یہ مخصوص جگہ ہے مناجات کی جہاں امام علی بیٹھ کے مانگتے تھے مسجد کوفہ میں، وہاں جا کے یہ دعا مانگو، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے بامبے میں. تمہارے سامنے اندھیرا ہے تو روشنی آ جائے. کر کے دیکھو، علی کے جملے میرے جملے نہیں ہیں. اس کے بعد وہاں میں کیا کروں، پوری مجلس مناجات پہ پڑھ دوں، میرا وقت ہو گیا. پھر وہاں سے آپ انٹر ہوتے آگے، جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ، ایک عظیم پرسنالٹی، کربلا کا پہلا شہید. کیا کروں، میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس آج جناب مسلم پہ پڑھ کے بتاؤں، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے جناب مسلم کی، کہ مولا حسین کے انوائے تھے. مولا حسین نے جو جناب مسلم کے لیے ورڈز لکھے تھے، لیٹر لکھا تھا کوفیوں کے نام پہ، خالی اس لیٹر کے فرسٹ 2 لائنز کو دیکھ لو، امام حسین نے جناب مسلم کے سٹیٹس کو بتایا قیامت تک کے لیے، حسین کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں، امام حسین کی رائٹنگ میں مولا حسین نے لیٹر دیا تھا، لیٹر دیا تھا کوفیوں کے نام پہ. کیا کہا تھا حسین نے، کہ میں اپنے سفیر کو، انوائے کو بھیج رہا جو میرا کزن، میرا بھائی ہے، فرسٹ کزن تھے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام. میں اپنے بھائی کو بھیج رہا. اب جملے سنو، ورڈ سنو، کہ کتنے ٹرسٹڈ تھے مسلم مولا حسین کے لیے. سوچو دوستو، امام اگر کسی پہ ٹرسٹ کرے تو وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. آپ امیجن کریں کہ اگر امام بولے کہ ہی از موسٹ ٹرسٹڈ پرسن فار می، ختم، اینڈ ہے اس کا سٹیٹس. آف جناب مسلم امام حسین کے وہ لیٹر کی وہ رائٹنگ سے آپ کو پتا چلے گا. امام حسین کہتے، اے کوفیو، میں اپنے بھائی کو، میرے انوائے کو، I'm sending to you. He is most trusted person. اس کے بعد لکھتے ہیں، اب جملہ سنو، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جس نے میری بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کی وہ ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ کی. کیا سن رہے یار آپ، کیا سن رہے؟ حسین کا ہاتھ اور مسلم کا ہاتھ برابر کیا، کہ جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے جناب مسلم داخل کی، اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنا مولا حسین کا شہدا. آج جو آپ زیارت پڑھتے نا مجلس کے بعد، نماز کے بعد جو آپ زیارت پڑھتے نا، जो हम नमाज के बाद पूरी दुनिया में शिया जो ज्यारत पढ़ता ना, इमाम हुसैन की, गरीब इमाम की, जमाने के इमाम की, जो इमाम हुसैन की आप ज्यारत पढ़ते आज, ये सुन्नत मुस्लिम है, ये जनाब मुस्लिम ने पहली दफा पढ़ी थी। ये अमल इतना पसंद आया कि अपनी पूरी उम्मत के जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद, वो दौर से 60 हिजरी से लेके आज तक, और आज से लेके जुहूर इमाम तक, हर शिया जो नमाज पढ़ा, ज्यारत पढ़ा, ये मुस्लिम की सुन्नत को पूरा कर रहा। शहादत से पहले जब जनाब मुस्लिम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी थी और पढ़ के मक्के का रुख करके इमाम हुसैन को सलाम किया था, वही सलाम आज हम करते। उसमें एडिशन ये हुआ कि गरीब इमाम का नाम भी ले लिया, जमाने के इसलिए कि बाद के इमाम है, लेकिन एक्चुअली जो इमाम हुसैन की ज्यारत हम पढ़ते सलाम अलैका या अब्दुल्ला, जो छोटी सी ज्यारत पढ़ते, ये जनाब मुस्लिम की सुन्नत। अब सोचो कितना, और एक बड़ी बात मुस्लिम जनाब मुस्लिम के लिए ये है कि आज जनाब मुस्लिम का कोई जनरेशन, उनकी नस्ल बाकी नहीं है, पूरी नस्ल करबला में खत्म हो गई, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। और जनाब मुस्लिम की एक और आपको बात बताऊं कि ये वो पर्सनैलिटी है मौला हुसैन ने जो इनको भेजा था कूफा, क्यों, इनका जो चेहरा था, गौर से सुनो, इनका जो फेस था, इनका जो फेस था वो बिल्कुल शबी थे रसूलुल्लाह के। शहजादे अली अकबर बाद में आए, जनाब मुस्लिम 28 ईयर्स के थे जब शहीद हुए, शहजादे अली अकबर तो बाद में। खानदान अहले बैत में दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं कि जो अल्लाह के रसूल की शबी थे। ऐसा लगता था जब जनाब मुस्लिम चलते थे मदीने में तो जो पुराने मुसलमान थे वो लोग खड़े हो जाते थे कि ऐसा लग रहा कि रसूल की जवानी जारी, चेहरा कॉपी थे जैसा शहजादे अली अकबर, सूरत में कॉपी थी उसी तरह पहले जनाब मुस्लिम हुए फिर बाद में शहजादे अली अकबर। और दूसरी फजीलत इनकी क्या थी पता है, एक तो चेहरा रसूल बिल्कुल कॉपी था अल्लाह के रसूल का, दूसरी जो इनकी आवाज थी जब ये बात करते थे तो ऐसे मालूम होता था जैसे इमाम अली बात कर रहे, क्या सुन रहे यार, ऐसा मालूम होता आवाज बिल्कुल मौला अली की, बिल्कुल कम जैसे इमाम अली की आवाज थी बिल्कुल इनकी। ये दो फजीलतें जनाब मुस्लिम को अल्लाह ने दी थी, इमाम अली की आवाज थी, रसूल का चेहरा था, इसीलिए रसूल इमाम हुसैन ने वहां भेजा था उनको कि मेरे पास रसूल भी है, मोहम्मद की भी शबी है, अली की भी शबी है। ये जनाब अच्छा, उसके बाद जनाब मुस्लिम की रोजे के बाद अब जरा अच्छा आगे बढ़ते, वहां पे कौन है, मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफी। मैंने 2 साल पहले इसी अशरे में पूरा मुख्तारनामा पढ़ा, वहां जाके मुख्तार के पास जाके क्या दुआ मांगना, जनाब मुस्लिम के पास जाके दुआ ये मांगना कि आपके पास जो जज्बा था इमाम हुसैन का, जो जज्बा था इस्लाम को बचाने का, जो सेक्रीफाइस का, मैंने अभी कहा कि जनाब मुस्लिम की पूरी फैमिली खत्म हो गई, जनरेशन खत्म हो गया करबला के लिए, तो आप ये दुआ करना कि आपके पास जो जज्बा सेक्रीफाइस का था वो जज्बा हमारे पास भी आ जाए। आप बोलेंगे सब करेंगे, जान तो नहीं देंगे, इसलिए कि बॉम्बे मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव बॉम्बे। बाबा सुनो, इमाम हुसैन आज तुम्हारी जान नहीं लेंगे, कम अज कम जज्बे को तो पैदा करो यार, ये दुआ करो वहां पे जाके, औरत मर्द लड़की लड़का सब, इफ यू गेट चांस, शहादत का सबसे बड़ा ऑनर है, सबसे बड़ा ऑनर है। मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता, कल मौका मिला तो शहादत के ऊपर एक छोटा वाकया पढ़ूंगा शहीद सानी का, कि शहादत इतना बड़ा स्टेटस है, अगर किसी को शहादत मिल जाए तो समझो उससे ज्यादा कामयाब इंसान कुछ नहीं। खाली एक जुमला बोलता, अगर तुम अल्लाह के नाम पे, हुसैन के नाम पे, मासूमीन के नाम पे अगर तुमने जान दी, तुम्हारी जान गई, तुम शहादत हुई, एक ड्रॉप, गौर से सुनो, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड अगर तुम्हारी बॉडी से जमीन पर गिरता है तो अल्लाह फौरन फरिश्तों को बोलता है कि जाके इस ब्लड को प्रिजर्व कर लो, सेव कर लो। क्यों करो, इसलिए सेव करो कि इस खून का एक खतरा ही गिरा, मैंने इसके सारे पिछला गुनाह माफ करके जन्नत में भेज दिया। यह है शहादत। इतनी आहिस्ता सलवात नहीं, जनाब मुस्लिम के नाम पे बड़ी आवाज से सलवात पढ़ो। बस, मेरे पास वक्त बिल्कुल निकल गया, 40 मिनट की मजलिस हो गई यूं ही, एक्चुअल तो मेरा वक्त हो गया, वहां से कोई मैसेज नहीं आ रहा इसलिए पढ़े जा रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी, जनाब मुख्तार के पास जाके क्या दुआ करना, मुख्तार के पास जाके भी यही दुआ करना कि अल्लाह जैसे तूने जनाब मुख्तार को चांस दिया टू सर्व इस्लाम, प्लीज जुमले मेरे गौर से सुनो, अल्लाह यू हैव गिवन चांस टू मुख्तार,
टू सर्व इस्लाम. मुख्तार कोई मासूम नहीं था, हम जैसा था. मुख्तार के पास जो जज्बा था करबला के लिए, हमारे पास क्या जज्बा है? एक मजलिस करते दिन भर में, वी डोंट हैव टाइम इन बॉम्बे. लेकिन मुख्तार के पास कितना बड़ा जज्बा था कि उन्होंने आज मुख्तार की वजह से अहले बैत के लबों पर मुस्कुराहट आई. अगर मुख्तार रिवेंज नहीं लेता तो आज तक सिर्फ गम रहता, खुशी खत्म हो जाती. मुख्तार की वजह से चौथे इमाम के लबों पर इस्माइल आई. मुख्तार की वजह से खानदान अहले बैत के घर में चूल्हा सुलगा. मुख्तार की वजह से खानदान अहले बैत की औरतों ने सर में तेल डाला. एक जुमला और आगे बढ़ के बोलूं, यह भी मासूम का जुमला है कि मुख्तार की वजह से हमारे घरों में शादियां हुई. मुख्तार की वजह से हमने ईद जहरा किया. मुख्तार की वजह से हमारे दिल को सुकून मिला. इतनी चीजें मुख्तार ने दी. जाके ये दुआ मांगो, मौला मौला मौला, अल्लाह तुझे से जनाब मुख्तार को मौका दिया. यू हैव गिवन चांस कि ते उनकी वजह से अहले बैत मुस्कुराए, स्माइल दिए, उनकी वजह से उनके दिलों में सुकून आया. तो प्लीज प्लीज परवरदिगार मुख्तार का वास्ता हमको भी ये चांस दे, हमको भी ये तौफीक दे. औरत भी बोले, मर्द भी बोले, लड़की भी बोले, लड़का भी बोले. क्यों? अगर तुमको मौका मिल जाए अपनी लाइफ में तो इससे बड़ा कोई स्टेटस नहीं हो सकता. सारी इबादतें एक तरफ है, अहले बैत के दिल को सुकून पहुंचाना एक तरफ. बस दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया, 10:15 हो रहे. आई एम सो सॉरी कि अभी मैं कूफे से भी बाहर नहीं, अभी मैं मुझे मीसा में तोमार के पास भी जाना है, वो कल इंशाल्लाह. पांच मदरसे रह गई, बस पांच छह. प्लीज टाइम पे आ जाओ, 9 बजे कल इंशाल्लाह मेंबर पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह. मुख्तार से पूछो कि करबला में हुसैन की शहादत के बाद जब उन्होंने खातिलाने हुसैन से बदला लिया तो एक एक खातिल से, मुख्तार का यह बहुत बड़ा एहसान है, एक एक खातिल को बुलाकर पूछा कि तूने क्या किया. और जब वो लोग नहीं बोलते थे तो ताजियाना बुलंद करते थे, फिर लिखवाते थे खातिल के मुंह से हुआ. आप इससे अंदाजा लगाओ कि जब मुख्तार ने पहले हुरमुला को पकड़ा तो हुरमुला जालिम को जब पकड़ के लाया गया, मैं मसाहब में आने से पहले एक दो ऐलान कर देता कि संडे के दिन सिलवासा के लिए यहाँ से और पूरे बॉम्बे से डिफरेंट जगहों से बसेस जा रहे, इमाम हुसैन की ज्यारत है, आपके सामने पूरे बाहर टेबल लगा हुआ है, बॉम्बे के डिफरेंट एरिया से बसेस जा रहे, जिसको भी जाना है चलें, वहाँ की मजलिस मैं खुद एड्रेस करूँगा और ज़ियारत इमाम हुसैन हम सब मिलके जरी के पास पड़ेंगे. 40 से पहले एक बहुत अच्छा मौका है कि हम हुसैन की ज़ियारत हुसैन की जरी पे पड़ें इंशाल्लाह. दूसरा ऐलान ये कर दूँ कि कल नहीं परसों, डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे, महफिल मुस्तफ़ा जुहू में वो मखसूस आमाल कराए जाएंगे. इस मजलिस के बाद, गुलिस्तान की मजलिस के फौरन बाद, नमाज जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ज़ियारत आशूरा. लेडीज़ जेंट्स सब के लिए ऐलान है कि डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे महफिल मुस्तफ़ा में 10:30 बजे 10:30 इन द नाइट ये अमाल होंगे. ये अमाल लास्ट ईयर जब हुए थे बॉम्बे में 12 से 14 फैमिलीज़ में जो इशूज़ थे, रिस्क का, बीमारी का, परेशानियों का, बिजनेस का, हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज का, 12 फैमिली, मुझे 12 फैमिलीज मालूम, और कितने लोगों के दुआएं कबूल हुई, इसलिए कि वहाँ सब इज्तमाही तौर पे खड़े रहकर दुआ मांगेंगे. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस है हम सब के लिए, इसलिए कि इस नमाज ही के लिए कहा गया कि अगर तुम्हारी हाजात राई के दाने या पत्तों के बराबर भी है तो अल्लाह का रसूल बोलता, जिसको दुश्मन ने सादिक कहा कि नमाज जाफर है तैयार इब्ने अबू तालिब के बाद तुम्हारी हर हाजत पूरी होती. तो इंशाल्लाह एक चांस है हम सब के लिए इस मजलिस के फौरन बाद फ्राइडे जुहू कपासवाड़ी में महफिल मुस्तफ़ा जो है वहाँ पे ये आमाल होंगे. लेडीज़ जेंट्स बच्चों को भी लेके आना,
इसलिए कि अगर बच्चे भी रहेंगे तो बच्चों की दुआ, वो लोग आमीन बोलेंगे तो जल्दी दुआ को बोलोगे। 10:30 शार्प महफिल मुस्तफ़ा का पास पढ़िए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस दोस्तों, जब जनाबे मुख्तार ने के सामने हुरमुला आया तो उस हुरमुला से पूछा मुख्तार ने कि जालिम तूने क्या किया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने ताजियाने को बुलंद किया और कहा हुरमुला तुझे बताना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन कि हुरमुला जैसा जालिम, के इतना बड़ा जालिम था, अब उसके मुंह से सुने उसने क्या किया। मुख्तार ने पूछा तूने क्या किया, तो कहा ए अमीर, मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था। जब मैं अपनी तीर को चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। आप इमेजिन करें कि यह जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। एक चीज़ और याद रखो, अगर शहजादे अली असगर का वास्ता दे के तुम आज दुआ मांगो, रबाब के बच्चों का वास्ता देकर दुआ मांगो, तो तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अली असगर का इतना बड़ा वास्ता, इतना बड़ा वास्ता, इसलिए कि ये वो मज़लूम शहीद है कि सबसे छोटा था और सबसे आखिर में शहीद हुआ। कितना प्यास को बर्दाश्त किया। दोस्तों, खामोश बैठ के नहीं सुनना। अगर तुम अली असगर के नाम पर भी आँखों में आंसू ना आए तो फिर वो शियत क्या है? आपको मालूम है कलकत्ता में मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, वहाँ पे मुझे बताया गया कि कलकत्ता का जो मेन आशूरे का जुलूस होता वो मठिया ब्रुज, एक जगह है मशहूर कलकत्ता में, वहाँ शाही इमाम बारगाह वाजिद अली शाह वाला, वहाँ से जुलूस निकलता और जुलझना साथ साथ रहता। और जब ये जुलूस मेन सिटी में पहुँचता कलकत्ता की, और वहाँ पे सारे नॉन मुस्लिम्स खड़े रहते, औरतें, जब ये जुलूस पहुँचता तो हर औरत के हाथ में बर्तन में दूध होता, और जब जुलझना पहुँचता तो वहाँ पे ये दूध डालते। तो उन औरतों से जो नॉन मुस्लिम और लेडीज़ रहती हैं, उनसे पूछा गया कि भाई तुम ये दूध लेके क्यों खड़े रहती यहाँ पे जुलझना के सामने? कहती है कि हमने सुना है कि हुसैन का एक बच्चा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, तो हम उस अली असगर के नाम पे दूध बांटते। दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, मैं आज मिंबर से बोल रहा, शहजादे को गवाह करके बोल रहा, आप ये कभी भी मौका मिले तो ये नज़र ज़रूर करना, रबाब के दोनों बच्चों की। बीबी रबाब के 2 बच्चे थे, एक बीबी सकीना थी, एक शहजादा अली असगर था। रबाब उस बीबी का नाम है कि जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। करबला में अली असगर ज़िबा हो गए, शाम में सकीना ख़त्म हो गई। अगर आज आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई मन्नत हो तो आप वो नज़र मांगो कि रबाब के दोनों बच्चों की मैं नज़र करूंगी अगर मेरा ये काम होगा। आप ये आजमा के देखो, इसलिए कि मैंने हमेशा किया ये नज़र। और जब किसी के लिए मैंने ये नज़र मानी है, और बीबी रबाब के बच्चों का वास्ता देकर जब कोई भी दुआ करता, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, इसलिए कि कायनात में इतने मजलूम बच्चे और कोई नहीं था, इतने मासूम बच्चे कोई नहीं। एक 6 महीने का सिन है, एक 3.5-4 साल की। आपको मालूम है इनकी नजर क्या है? बीबी सकीना की नजर किस पे दी जाती? ठंडे पानी के ऊपर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं रोना, ऐसा पुरसा नहीं देना। उस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा जिसको रोने नहीं दिया। जब बच्ची हाय हुसैन कहती थी, सिमट तमाचे मारता था, ये वो बच्ची का जिक्र है कि जिसके लिए हुसैन ने कहा कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। तो बीबी सकीना की नज़र मानो कि मौला अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं बीबी सकीना की नज़र दूंगी। तो किस चीज़ पे देना? ठंडा पानी गिलास में रखो और बीबी सकीना को सलवात और अलहम और खुलवल्ला पढ़ के हदिया करो, देखो तुम्हारे काम कैसे बनते। और शहजादे अली असगर की नज़र जो है वो दूध पे जी जाती, थोड़ा सा दूध रखो और उस पे नज़र दो, सारी पहाड़ की उतनी दुआएं भी रद्द नहीं होती बल्कि दुआएं कबूल होती। बस दोस्तों, हुरमुला से जनाब मुख्तार ने पूछा कि ए हुरमुला बता तूने क्या किया, तो कहता है अमीर, मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था, जब मैं तीर मारता था तो 7 लोहे के दीवारों को चीरता हुआ तीर, ये जालिम अली असगर के लिए चुना गया। मुख्तार ने कहा फिर हुआ क्या, तो कहा मैं 7 तीरों को लेकर आया था, 7 तीर करबला में लाया था, लेकिन 4 तीर मेरे निशाने पे नहीं लगे, 3 तीर निशाने पे लगे, बस इसी पे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा, वक्त हो गया मेरा, इसी पे मजलिस ख़त्म कर रहा। तड़प के रोना, आज रबाब के दिल को सुकून मिलना कि गुलिस्तान से मेरे बच्चों का मुझे पुरसा मिला। ये वो बीवी है कि जिसने खबरे हुसैन पे अपने रुखसारे को रख के एक जुमला कहा था कि ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे वारिस, ऐ मेरे आका हुसैन, मैं वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। उस बीवी को आज पुरसा दो, बस 2 मिनट में मैं मजलिस ख़त्म कर रहा। बीवी रबाब ने, बीवी रबाब का ये वो चांद है कि जिसको ये यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा। हुरमुला कहता है कि अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त मारा कि जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे, मेरा तीर था जो मशके सकीना पे लगा, मैंने अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया, मशके सकीना छिट गई। दूसरा तीर वो था जब हुसैन असर के वक्त घोड़े पे झूम रहे थे, कोई नैजे मार रहा था, कोई तलवारें मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, हुसैन घोड़े से जमीन पे नहीं आ रहे थे, तो उमर साहब ने कहा था हुरमुला हुसैन को तीर चला, मैंने हुसैन की पेशानी पे तीर मारा, फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर आ गया। तीसरा तीर वो था जब हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे, मैंने तीर चलाना चाहा तो मैंने देखा कि खैमे का पर्दा हटता है, एक माँ है जो तड़प के कहती है कि ऐ हुरमुला मेरा बच्चा प्यासा है, लेकिन मैंने तीर मारा, हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनकलिब हो गए। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा इन्ना लिल्लाह है वा इन्ना इलैहि राजिऊन।